हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय छह श्लोक क्रमांक 16। नात्यश्नदस्तु योगोस्ति न च कांतमश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। तात्पर्य, यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नींद के नियमन की संस्तुति की गई है। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। मनुष्यों को मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल तथा दुग्ध उपलब्ध है। ऐसे सादे भोज्य पदार्थ भगवद गीता के अनुसार सतोगुणी माने जाते हैं। मांसाहार तो तमोगुणियों के लिए है। अतः जो लोग मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वे पाप कर्मों को भोग करेंगे, क्योंकि वे केवल दूषित वस्तु में खाते हैं। भुंजते ते त्वघम पापा, ये पचन त्यात्म कारणात्। जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए खाता है या अपने लिए भोजन बनाता है किंतु कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वह केवल पाप खाता है। जो पाप खाता है और नियत मात्रा से अधिक भोजन करता है, वह पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता। सबसे उत्तम यही है कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग को ही खाया जाए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो इससे पूर्व कृष्ण को अर्पित ना किया गया हो। अतः केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योगाभ्यास में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। न ही ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता है जो कृत्रिम उपवास की अपनी विधियां निकालकर भोजन नहीं करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास करता है। न तो वह आवश्यकता से अधिक उपवास करता है, न ही अधिक खाता है। इस प्रकार वह योगाभ्यास करने के लिए पूर्णतया योग्य है। जो आवश्यकता से अधिक खाता है, वह सोते समय अनेक स्वप्न देखेगा, अतः आवश्यकता से अधिक सोएगा। मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति 24 घंटों में से 6 घंटों से अधिक सोता है, वह अवश्य ही तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है। ऐसा व्यक्ति योग नहीं साध सकता। एक इंपॉर्टेंट बात है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस संबंध में बोलते हैं कि हमारी सारी इंद्रियां भोग की तरफ आकर्षित हैं, लेकिन अगर उनको खाना नहीं दिया जाए, मतलब हम कम खाते हैं तो हमारी बाकी इंद्रियां शांत हो जाती हैं। लेकिन जीव एक ऐसी इंद्रिय है, अगर उसको भोग पदार्थ ना दिए जाए तो ये और अधिक प्रबल हो जाती है। जैसे आंखों को उनका दृश्य वस्तु नहीं देंगे तो आंखें बुरी वस्तु देखने के प्रति आकृष्ट नहीं होंगी। इसी प्रकार से कान है, इसी प्रकार से नाक है। लेकिन जीव एक ऐसी इंद्रिय है जिसको अगर हम खाने के पदार्थ नहीं देंगे तो फिर ये और मचल जाएगी और उन्मत्त हो जाएगी। तो इसलिए, और अगर बहुत अधिक खाते हैं तो इंद्रियों को संयम करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाकी सारी इंद्रियों को बहुत अधिक शक्ति मिल जाती है। तो भगवान के भक्त इस बात का निराकरण करते हैं, निवारण करते हैं। भगवान कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करके उतनी मात्रा में जितना कि शरीर चलाने के लिए आवश्यक है। बहुत अधिक खाने से भी दिक्कत हो जाती है। वैसे तो भगवान का प्रसाद खाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बहुत अधिक खाएंगे तो नेचुरल सी बात है रोग हो जाएगा। और बहुत अधिक खाना खाने से शरीर में आलस भी भर जाता है। तो हम लोगों को प्रयास ये करना चाहिए कि नियत समय में एक सीमित मात्रा में प्रसादम पाने का प्रयास करें। भक्त को, भक्तों के गुणों में से एक होता भी है, उसे कहते हैं मित भूख। वो भक्त कम खाते हैं, लेकिन हम लोग उसको तुरंत इमिटेट नहीं कर सकते। अगर कृत्रिम रूप से अपने खाने को कम करेंगे तो देखेंगे बाद में एक दो दिन तो हम कम खाएंगे, उसके अगले दिन फिर डबल खा लेंगे। तो उससे अच्छा है जितना आपका शरीर की आवश्यकता हो, जितना आपका शरीर हजम कर सके, उतना भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। अगर भोग व्यक्ति खाता है जो भगवान को अर्पित नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति तो पाप ही खाएगा। तो पापी व्यक्ति योग का अभ्यास कैसे कर पाएगा? तो इसलिए आवश्यक है कि मांसाहार वगैरह को तो त्यागना ही चाहिए, और भगवान को अर्पित अगर भोजन नहीं है तो उसको भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। बहुत अधिक सोने से भी तमोगुण बढ़ जाता है। प्रभुपाद अच्छी बात यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर बहुत अधिक व्यक्ति खाता है तो फिर उसको बहुत अधिक सपने आएंगे, और बहुत अधिक सपने आएंगे मतलब उसकी नींद बहुत गहरी नहीं होगी और इस कारण से उसको अधिक सोना पड़ेगा। तो तो इसलिए इन सब चीज़ों के द्वारा, अपने शरीर को नियमन करने के द्वारा हम सतोगुणी होते हैं, और जितना हम सतोगुणी होने लगते हैं उतना भक्ति करना हमारे लिए सहज हो जाता है। तो इसलिए आवश्यक है कि इस प्रकार से व्यक्ति करे। लेकिन अगर व्यक्ति बहुत कम खाएगा और बहुत कम सोएगा तो फिर उसके लिए भक्ति करने का अभ्यास, भक्ति का अभ्यास करने के लिए उसका शरीर शक्तिशाली नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें बैलेंस करने का प्रयास करना चाहिए, ना तो बहुत कम ना बहुत अधिक। युक्तहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति भवति दुःखः। जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर देता है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे कि हर चीज में नियमन करना होता है। इसका सिद्धांत क्या है? जैसे व्यक्ति के सोने का समय है 9 बजे, 9:30 बजे या चलिए 10 बजे, तो अगर सोने का समय आ गया और उस समय तो वो सो गया तो वो जो नींद का कष्ट है उससे वो बच जाएगा। भूख लगने का नियमित समय होता है, जब सूर्य उग जाता है तब व्यक्ति को भूख लगती है। तो 8:30 बजे अगर मान लीजिए वो प्रसाद ले ग्रहण कर लेता है तो वो भूख लगने के कष्ट से बच जाएगा। तो इस प्रकार से व्यक्ति अगर नियमित जीवन जीता है तो ये जो हमारे कष्ट है जीवन में, भूख लगने के, नींद आने के, वो व्यक्ति उससे बच जाता है, अननेसेसरी कष्ट। और इनका निराकरण टाइम से ना किया जाए तो आगे जाके शरीर में रोग हो जाते हैं। तो अगर नियमित जीवन जीते हैं तो उससे भी व्यक्ति बच जाता है। आजकल लोग अपने इस प्रकार के जॉब करते हैं जिसमें रात रात भर जगना पड़ता है। इस प्रकार की नौकरी वैदिक सभ्यता में नहीं की जाती थी, रात में सब लोग विश्राम करते थे। तो ऐसा करने की वजह से बहुत सारे लोगों के शरीर में रोग आने लगते हैं और वो रोग फिर बाद में पैसा खर्च करने से नहीं प्राप्त हो जाता। तो इसलिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि रात में सोए और दिन में वो कार्य करे, और स्पेशली सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ जाए, यानी कि सूर्य उगने की कम से कम 1.5 घंटा पहले। तात्पर्य, खाने सोने रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। आप सबने सुना होगा अति सर्वत्र वर्जित, कोई बहुत अधिक खाएगा, बहुत अधिक सोएगा, हमेशा भय में जिएगा, अपनी रक्षा करने का प्रयास करेगा, रोम से लड़ता ही रहेगा, ये बहुत अधिक मैथुन करेगा तो उसका शरीर रुग्ण हो जाएगा और वो योग अभ्यास नहीं कर पाएगा। जहां तक खाने का प्रश्न है, इसे तो प्रसादम या पवित्रीकृत भोजन के रूप में नियमित बना जा सकता है। मतलब उससे होगा क्या, जब हम बाहर जाएंगे और हम देखेंगे कि कोई वस्तु भगवान को अर्पित नहीं है तो हम उसको नहीं खाएंगे, इसलिए बार बार खाने की आदत से व्यक्ति बच जाता है। भगवद गीता के अनुसार भगवान कृष्ण को शाक, फूल, फल, अन्न, दुग्ध आदि भेंट किए जाते हैं। इस प्रकार एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसा भोजन न करने की स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त रहता है जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता या कि सत्वगुणी नहीं होता। जहां तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के निरंतर सतर्क रहता है, अतः निद्रा में वह व्यर्थ समय नहीं गवाता। अवर्थ कालत्वम, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता, अतः वह कम से कम सोता है। इसके आदर्श शिल रूप गोस्वामी हैं जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे और कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। ठाकुर हरिदास तो अपनी मालक में 3 लाख नामों का जप किए बिना ना तो प्रसाद ग्रहण करते थे और ना सोते ही थे। तो ये तो आदर्श उदाहरण है। इन लोगों को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतना सुख मिलता था कि ये शरीर की आवश्यकताओं से पूरी तरह से ऊपर उठ गए थे। हम लोग इनका अनुकरण नहीं कर सकते हैं लेकिन इनके पदचिन्हों पर चल सकते हैं, और पदचिन्हों पर चलने का अर्थ है कि व्यक्ति कम से कम अपने जीवन में कुछ नियम लेके आए, इतने समय सोना है, इतने बजे उठना है, और कम से कम सुबह जल्दी उठने का अभ्यास तो हर व्यक्ति को करना चाहिए। जहाँ तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण के संबंधित न हो। इस प्रकार उसका कार्य सदैव नियमित रहता है और इंद्रिय तृप्ति से अदूषित रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हरे कृष्ण मंत्र के जप के अलावा भी जो भी हम बाकी कार्य कर रहे हैं उनका संबंध भगवान से होना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो उसका उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि धन कमा रहा हूं ताकि भगवान का प्रचार करूं और भक्तों अपने परिवार को भी कृष्ण भावना भावित जीवन जीने के लिए एक वातावरण दे सकूं। तो फिर वो कार्य भी कृष्ण भावना से संबंधित हो जाते हैं। क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता। क्योंकि वह अपने कार्य वचन निद्रा जागृति तथा अन्य सारे शारीरिक कार्यों में निमित्त रहता है, अतः उसे कोई भौतिक नहीं दुख नहीं सताता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न नहीं नहीं उठता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवान की सेवा में ही इतना सुख मिलता है कि उसको अलग से कोई इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा होती नहीं है। इंद्रियों को जो भी सुख मिलता है वो भगवान की सेवा के द्वारा ही मिल जाता है और इस प्रकार से व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। प्रायः जगत में लोग 5-6 दिन काम करते हैं और फिर 2 दिन वो आराम करना चाहते हैं, लेकिन भक्तों को इस प्रकार के अवकाश लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अपितु हम देखते हैं हमारे ही मंदिर में शनिवार इतवार में भक्त अधिक सेवा करते हैं, लेकिन बाहर के लोग शनिवार इतवार को छुट्टी लेते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि उनको सुख नहीं मिलता है अपने कार्यों करने में, इसलिए वो त्याग करके कुछ एंटरटेनमेंट की बात करते हैं। श्रील प्रभुपाद से उनके एक शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद कृष्ण भावना में कोई मनोरंजन नहीं है? तो प्रभुपाद जी ने बोला, कृष्ण भावना में मनोरंजन के अलावा है क्या? सब कुछ तो मनोरंजन ही है। आप कीर्तन में जाइए, चाहे भगवान की कथा सुनिए या प्रसाद ग्रहण करिए, सब कुछ मनोरंजन है। तो अलग से मनोरंजन करने की कोई आवश्यकता एक कृष्ण भक्त को नहीं होती है। हरे कृष्णा।